हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आपको सिर्फ वहम हो रहा है वेदांजी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इतना बोलकर वो उठी और फिर तीनों कॉफी कप को वापस ट्रे में रखने लगी। वेदांत ने अपने हाथ में पड़ा लैपटॉप बेड पर रखा और फिर उठकर अनाही का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम दुनिया से झूठ बोल सकती हो लेकिन अपने दोस्त से नहीं। बताओ क्या हुआ? उसकी ये बात सुनकर अनाही ने हैरानी से वेदांत की तरफ देखा और फिर आखिर में एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा, एक्चुअली वो रूहान जी रात को कहीं गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। ना उन्हा फ़ोन लग रहा है तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। एक बाल के लिए जैसे मन कर रहा है मैं उनकी लोकेशन ही निकलवा लूँ और भाग कर उनके पास चली जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। पर न जाने लगेगा कि मैं उन पर शक कर रही हूँ और मेरा दिल है कि मान नहीं रहा। मुझे जल्दी से उन्हें देखना है। ये सुनकर वेदांत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी प्रॉब्लम? अक्सर ऐसे चला जाता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी। रुक जाओ, मेरे पास उसके दोस्तों के नंबर हैं, मैं उनसे कॉन्टैक्ट करके तुम्हें बताता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। डोंट वरी, वो जल्दी आ जाएगा। और जब से उसकी शादी हुई है तब से तो वो बस हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, तो तुम्हें उस पर शक करना भी नहीं चाहिए। इतना बोलकर वेदांत ने अपना फ़ोन उठाया और फिर सबसे पहले मोहिनी का नंबर डायल किया। लेकिन जब उसने मोहिनी से रूहान के बारे में पूछा तो मोहिनी ने साफ साफ मना करते हुए कहा, नहीं, रूहान तो नहीं आया और ना ही मेरी उससे कल शाम के बाद बात हुई है, और हमारा ऐसा कोई प्लान भी नहीं था तीनों लोगों का मिलने का। तो वो साहिल और जलन के पास भी नहीं है क्योंकि हम तीनों तो अपने अड्डे पर ही हैं और वो यहाँ नहीं है। ये सुनकर वेदांत ने कॉल कट कर दिया। अनाही ने बेचैन होते हुए कहा, क्या हुआ, पता चला भगवान जी उनके साथ हैं क्या? वेदांत ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उनके पास तो नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएगा। ऐसे तुम्हें बिना बताए ज़्यादा देर तक वो भी नहीं रह पाएगा। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहा हो और तुम्हें ना बताना चाहता हो। जब से तुम्हारा मूड अपसेट हुआ है वो वैसे भी कोशिश ही कर रहा है तुम्हें हंसाने की, तो तुम थोड़ा पॉजिटिव सोचो। अनाही ने गहरी सांस ली और फिर हाँ में सिर हिलाया और हाथ में ट्रे लेते हुए वेदांत के कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद वेदांत भी थोड़ा परेशान होते हुए बोला, ये लड़का ऐसे बिना बताए कहाँ चला गया है? वेदांत के दिमाग में सिर्फ वो सारे क्लब चल रहे थे जहाँ रूहान ट्रेन करने जाता है। कुछ सोचकर उसने क्लब के ओनर को कॉल किया। थोड़ी देर बाद ही उधर से किसी के हेलो बोलने की आवाज़ आई। वेदांत ने थोड़ी देर रुककर कहा, क्या रूहान यहाँ आया था? सामने से उस आदमी ने धीरे से कहा, नहीं सर, रूहान तो कई दिनों से यहाँ नहीं आए हैं, इनफैक्ट महीने भर से ज़्यादा हो गया है उनको यहाँ देखे हुए। ये सुनकर वेदांत ने एक लंबी सांस ली और थैंक यू बोलते हुए कॉल कट कर दिया। उसके बाद उसने दूसरे क्लब के मैनेजर को कॉल किया, लेकिन जितने भी लोगों को कॉल किया सबका यही जवाब था कि रूहान किसी भी क्लब में नहीं गया था। ये सुनकर वेदांत को कम से कम ये तसल्ली तो हो गई कि रूहान इस वक्त ड्रिंक तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो अपने दोस्तों के साथ भी नहीं है, ड्रिंक भी नहीं कर रहा है, तो वो गया कहाँ होगा? वेदांत को जंगल के बारे में नहीं पता था, वरना शायद वो भी अनाही की तरह यही सोचता कि वो ज़रूर किसी जानवर को बचाने में लगा होगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तब तक विहा भी नहाकर बाहर निकली। उसने गुलाबी रंग की अनारकली पहनी थी। उसने उसका दुपट्टा वेदांत के हाथों में देते हुए कहा, क्या अब आप यही सोचकर परेशान हैं कि मेरे साथ कॉलेज में कैसे रहेंगे? देखिए, मैं तो पहले ही कह रही हूँ आपको, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, हम लोग आज कैंसिल कर देते हैं। कल तक आप सोचकर मुझे बता देना कि आपको मेरे साथ जाना है या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई अच्छा इंसान ज़्यादा परेशान हो, और ख़ास करके तब जब वो मेरा खुद का पति हो। आपको पता है ना मैं आपकी कितनी ज़्यादा केयर करती हूँ, मुझसे ज़्यादा केयरिंग बीवी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती, अगर आप लालटेन लेकर भी ढूंढो। वेदांत मुस्कुराया और फिर आगे बढ़कर विहा को पीछे से गले लगाते हुए बोला, हाँ टमेटो, मैं तो कब का ही मान चुका हूँ, अगर मैं लालटेन या माइक्रोस्कोप लेकर भी तुम जैसी प्यारी सी टमेटो ढूंढने निकलूंगा तो मुझे नहीं मिलेगी, और मैं भगवान का बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, इसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। विहा ने आंखें बड़ी करके कहा, अरे मैं कॉलेज की बात कर रही हूँ, आप कहाँ पहुँच गए? वेदांत मुस्कुराया और फिर उसके कंधे को चूमते हुए बोला, हाँ बेटा, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना है। वेदांत को देखकर लग रहा था कि आज तो वो मान बैंजो बन चुका है विहा के साथ कॉलेज जाने का, और अब विहा की कोई भी तरकीब काम नहीं करने वाली है, इसलिए थक हार कर वो भी रेडी होने लगी। पूरी तरीके से तैयार होने के बाद वो दोनों हाल में आए, जहाँ हाल में रवि और अनाही निवेदिता के दोनों तरफ बैठी थीं और निवेदिता उन्हें कुछ समझा रही थी। दिवाली पर वे लोग खुद से अलग अलग शेप की खूबसूरत मोमबत्तियां बनाती हैं और निवेदिता आज उन दोनों को वही सिखा रही थी क्योंकि दिवाली आने वाली थी। रवि ने एक्साइटेड होते हुए कहा, खुद से मोमबत्तियां बनाना कितना इंटरेस्टिंग है, आप देखना, मैं सबसे खूबसूरत मोमबत्ती बनाऊंगी और सबसे अच्छा कलर भी मेरी वाली का ही होगा, निवेदिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ बेटा, सच्चे दिल से बनाना, तुम्हारी मोमबत्ती सबसे खूबसूरत होगी। विहा जल्दी से उनके पास आई और फिर उनके सामने रखी टेबल का सामान साइड करते हुए उन तीनों के सामने बैठ गई। उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, इस कैंडल मेकिंग कॉम्पिटिशन में मेरे लिए जगह नहीं है क्या? उसके ये सुनकर निवेदिता हंसने लगी। उसने हंसते हुए विहा का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, क्यों नहीं है, तुम्हारे लिए तो जगह ही जगह है। अभी तुम कॉलेज जाकर आओ, शाम को तुम्हें भी सिखाऊंगी कि ये सब कैसे बनाते हैं। चलो ब्रेकफास्ट कर लो, हम सब ने पहले कर लिया है। ये सुनकर विहा खुश हो गई और फिर वेदांत और विहा ने ब्रेकफास्ट किया और कॉलेज के लिए निकल गए। अनाही, रवि और निवेदिता फिर से अपना काम करने लगे। ये सब करके कुछ देर के लिए अनाही का ध्यान भी रूहान से हट गया था और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो खुद को रूहान के ख्याल से दूर ही रखे। माधवी, राधिका, रितेश और जिग्नेश, उन चारों की अपने कमरे में अलग मीटिंग चल रही थी जहां वे रश्मि से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। रश्मि के पीछे क्लिनिक में एक चेयर पर रूहान लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं, शायद रश्मि ने उसे बेहोश कर रखा था। रश्मि तड़पते हुए बोली, मैंने तुम लोगों ने जैसा कहा वैसे कर दिया है, अब तो तुम मेरी बच्ची को छोड़ दो और मेरी उससे बात भी करवाओ। उसकी ये बात सुनकर रितेश डेविल स्माइल करते हुए बोला, हमने पहले ही कहा था हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, अब वो कुर्सी पर बंद ही नहीं रहेगी बल्कि आराम से रहेगी, उसे कोई परेशान भी नहीं करेगा। लेकिन वो तब तक तुम्हारे पास नहीं आएगी जब तक रूहान पूरी तरीके से पागल ना हो जाए। उसके बाद शायद हम सोच सकते हैं कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास वापस भेज दें, उससे पहले तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये सुनकर रश्मि ने रोते हुए कहा, पर मुझे मेरी बच्ची से बात तो करवाओ। रितेश मुस्कुराते हुए बोला, एक बार रूहान को होश आ जाए और वो वापस घर आ जाए, उसके बाद मैं आता हूँ तुम्हारे पास, फिर तुम्हें तुम्हारी बेटी से बात करवाऊंगा।
जिग्नेश ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, तब तक के लिए बाय, जल्द मिलते हैं, और फिर कॉल कट कर दिया।